वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी की है। कुल 28 नरक है, इसका विस्तृत वर्णन हुआ पांचवें स्कंध में। राजा परीक्षित उसको ध्यान पूर्वक सुने हैं। नाना उग्र यातनान यातन में व्याख्या तुम अर्हसी। राजा परीक्षित जब और नरकों का वर्णन और नरकों में जो यातना नाना प्रकार की और उग्र यातना तो राजा परीक्षित जो भक्त है वैष्णव है पर दुखी दुखी होते हैं, पर दुखी और उनके दुख से स्वयं दुखी हो जाते हैं। तो ये वर्णन जब सुने तो बड़ा डरावने रोंगटे खड़े करने वाले वर्णन। ऐसा कोई उपाय है ताकि लोगों को नरक में जाना ही ना पड़े? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात। तो टाल ही सकते हैं तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ उपाय समझाइए, कुछ व्याख्या उपाख्यान सुनाइए, उपाय सुनाइए ताकि अधोगच्छन्ति तामसः भगवान तो कहे ऊर्ध्वं गच्छति ऊपर जाने वाले भी है, मध्ये तिष्ठति चार्यसः अधः गच्छन्ति नीचे जाने वाले भी है, तामसः तो वह राजा परीक्षित ने उपाय पूछा है। कोई उपाय है तो सुखदेव गोस्वामी निश्चित भी क्वेश्चन भी परफेक्ट है और उसका उत्तर भी अभी परफेक्ट उत्तर भी है। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर और सभी के कल्याण जिस जिन बातों में हो उसी से संबंधित कोई प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न का स्वागत हुआ है। और सुखदेव गोस्वामी न चेदिह अपाचीतिम यथा हंसः कृतस्य कुर्यान् मनमुक्ति पाणिभिः। सुखदेव गोस्वामी कहे लोग तो पाप करेंगे और पाप कैसे कैसे करते हैं, कायेन मनसा वाचा जिसको हम कहते हैं कायेन, पाप काया से होता है मन से होता है, काये न मनसा वाचा से होता है, उसी को कहे हैं मन उक्ति पाणी ही। तो प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित करने से फिर उस पाप का जो फल है परिणाम भोगना नहीं पड़ता, इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपैति कीर्तिता मे भवतस्ते नमा यातनाः। ऐसा हुआ, लोगों को जरूर जाना होगा नरकान, नरकान उपैति। काम काम क्रोध लोभ के वशीभूत होके किए हुए कार्य भगवान अन्य स्थानों पर गीता में कहे हैं, ये नरक के द्वार है। नरक के द्वार काम कामांध, फिर क्रोधांध, फिर लोभांध। इससे जब व्यक्ति अंधा होता है, काम से अंधा, क्रोध से अंधा, या क्रोध से भ्रमित और अंधा ही, और लोभ, तो ये नरकों के द्वार तक पहुंचाने वाले कार्य है। नरकानुपैति ध्रुवम निश्चित ही, कोई टाल नहीं सकता। नरक, नरक एक स्थान है इस ब्रह्मांड में, नरक है या स्वर्गलोक भी है, तो बीच में मृत्यु लोक है, नीचे पाताल लोक, नरक लोक भी है। लोग इसे कहने की, लोग कहते हैं अनाड़ी लोग कहते हैं, वैसे कोई बड़े बड़े स्वामी भी कहते हैं, कोई अलग से स्थान है। स्वर्ग नामक कोई अलग से स्थान नहीं है, या नरक कोई अलग से स्थान नहीं है, यही है पृथ्वी पर ही नरक की स्थान है, या स्वर्गीय कोई सुख। कश्मीर को नंदन वन कहते हैं, या अमेरिका मोरई अभिलाष, अमेरिका देश ही दियो वास से कहने वाले तुलसी महारानी, ऐसी कृपा करो कि मुझे वीजा मिल जाए, ताकि मैं अमेरिका में जाके सेटल हो सकता हूँ, वहाँ ग्रीन कार्ड मिल जाए मुझे। तो स्वर्ग अमेरिका द हेवनली प्लैनेट, ऐसी कुछ लोगों की गलत धारणा है, लेकिन वैसे ऐसा स्थान है जिसको स्वर्ग कहते हैं, ऐसा स्थान है जिसको नरक कहते हैं, इसमें ये मृत्यु लोक भी है एक ब्रह्मांड में। पाप निष्कृत यतीत, तो वह प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए प्रायश्चित करने के लिए, उसका परिणाम प्राप्त होने के पहले ही। तस्मात् पुरा एव आशु इह, जड़ से जितना जल्द से जल्द हम प्रायश्चित कर सकते हैं, पश्चाताप और प्रायश्चित, पश्चाताप, और मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, कुछ शोक करना, दुखी होना, और कुछ कार्रवाई करना, उसको प्रायश्चित, ताकि उस कृत्य का फल भोगना न पड़े, तो ऐसा कार्य तुरंत ही करना चाहिए। जितना तुरंत करे उतना अच्छा है, स्वीकार करे हमसे पाप हुआ। लोग जाते हैं क्रिश्चियन चर्च में जाके, वहां के पुरोहित प्रीस्ट पादरी जो होते हैं, तो वह उनसे कहें कि हमसे ये पाप हुआ, ये अपराध हुआ, कन्फेशन, फिर अटोनमेंट, फिर क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये चलता रहता है। उसे हर संडे को वो जाएंगे, क्यू में खड़े होंगे और पोप या जो भी प्रीस्ट होते हैं अपना सब सुनाएंगे, जो जो गलतियाँ हुई, पाप हुई, पाप हुआ, और फिर आप कहिए कुछ प्रायश्चित, क्या प्रायश्चित। ये तो हमारे धर्मांतर्गत भी एक वेदों में बहुत बड़ा विभाग है, कर्म कांड सेक्शन। यह धर्म शास्त्र है, मनुस्मृति भी है, इसमें आपको लंबी सूची मिलेगी, ये पाप के लिए प्रायश्चित, ये पाप के लिए प्रायश्चित, ये पाप के लिए। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसी विधि का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी ने किया है। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम्। तो कितना पाप है, गुरु पाप है, गुरु मतलब बड़ा पाप, कोई भारी पाप है या कोई हल्का पाप है, तो उसके अनुसार प्रायश्चित भी उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं, भीषक चिकित्सेन रुजाम निदानवित। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, चिकित्सक, तो नाड़ी परीक्षा करता है, तो निदान होता है, डायग्नोसिस होता है, और फिर ऐसा भी रोग है लघु या गुरु उसके अनुसार, और इसी से हेडेक, तो एस्प्रिन ले लो, जाओ, नहीं तो ये तो ब्रेन हैमरेज की केस है, आईसीयू में एडमिट हो जाओ। गुरु बड़ा सीरियस मामला है, ये दवा ले लो, घर जाओ, बेड रेस्ट करो, नहीं नहीं आप यही रहो, एडमिट हो जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे वैसे ही प्रायश्चित भी पाप के लघुता गुरुता के अनुसार होने चाहिए। राजा परीक्षित ने ये जब बात सुनी है, वैसे ये उपाय सुखदेव गोस्वामी को नहीं कहना चाहिए था, तो अभी कह दिए, कहे तो इसमें आचार्य गण कहते, प्रभुपाद भी लिखे हैं तात्पर्य में, क्या राजा परीक्षित, परीक्षित की परीक्षा हो रही है, देखता हूं अभी ये सुनाता हूं, ऐसा हाँ ये उपाय है, तो मेरा शिष्य ये राजा परीक्षित, इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिस्पांस है, मैं देखता हूं कितना भक्ति को सीखे समझे है। तो राजा परीक्षित तुरंत कहे, दृष्ट श्रोताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनौ अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथा कथम। नहीं 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 नहीं, ये प्रायश्चित तो बेकार है, आप तो प्रायश्चित का प्रायश्चित आपने उपाय समझाया, लेकिन ये प्रायश्चित उपाय नहीं है, ये पैचवर्क है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कहने का तात्पर्य है उनका। दृष्ट श्रुताभ्याम, सुना था कि ऐसा ऐसा पाप करने से ऐसा फल मिलता है, चोरी करने से कारागार में जाना पड़ता है, लीव लाइफ किंग साइज, हमारे ब्रांड का सिगरेट पियो तो फिर कैंसर हॉस्पिटल दिस वे, इस ओर कैंसर अस्पताल है, ऐसा सुना है या सिगरेट के पैकेट पर पढ़ा भी है, कर्क रोग हो सकता है। तो दृष्ट श्रुताभ्याम, सुना भी था और देखा भी है, शास्त्रों की वाणी या संतों ने कहा ना ना डोंट डू दिस, मत करो मत करो। जाना ना भी, फिर जानते हुए भी, देखा सुना जान भी लिया कुछ, तो अभी लोग ऐसा पाप का कृत्य करते ही है जिसमें अहित, खुद का अहित वाला कार्य करते ही है। करोति भूयः विवशः, विवश होके, अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। पहली बार अर्जुन ने पूछा था, कृष्ण से पूछा, हम जानते हैं कि ये ऐसा, ये पाप कृत्य ऐसा नहीं करना चाहिए, अनिच्छनपि अनिच्छनपि बलादिव, कोई बलपूर्वक पापम चरति, कोई पाप करवाता है तो वो क्या है, वो कौन है, विवश हो के हमको पाप करना ही पड़ता है, कौन सी शक्ति है, कौन सी व्यक्ति है। तो राजा परीक्षित भी कह रहे हैं, जो प्रायश्चित करने वाले हैं, प्रायश्चित करने के उपरांत भी पुनः पुनः वे पाप करेंगे, पाप किया प्रायश्चित किया तो वह उसे पाप की जो वासना है, पाप की वासना, पापा जी वासना नको दऊ डोला त्या हुनी आंधड़ा काय बरा समी, तो का मणे तुकाराम महाराज ने कहा, तो वह पापा जी वासना, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, पाप किया था फिर प्रायश्चित किया तो उस पाप का तो फल भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन पुनः पाप करेगा क्योंकि पाप की वासना, तो पाप के बीज जो बोए हैं, हम कुछ कार्य करते हैं पाप का कृत्य करते हैं तो वो कृत्य तो वैसे इज टेम्पररी, कार्य तो वो कार्य तो शाश्वत नहीं है, कार्य समाप्त हुआ, लेकिन शेष क्या रह गया, बचा क्या, पाप की वासना, पाप के बीज बोए उस पाप के कृत्य ने, पाप की वासना, पाप की इच्छा बनी रहती है, ये पीछे रह जाती है। तो क्वचित क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः, ये तो बेकार है, राजा परीक्षित ने कहा, कुछ समय के लिए आप कुछ पाप किया, पुनः कुछ प्रायश्चित किया, उस पाप का फल जो भी मिलना था उससे तो मुक्त हो गए, किंतु पुनः पुनः पाप हो जाता है। तो वह और ऐसे ऐसा अनुसरण पाप और प्रायश्चित, पुनः पाप प्रायश्चित, पुनः पाप प्रायश्चित, इसको राजा परीक्षित ने कहा तो कुंजर शौचवत। ये तो कुंजर मतलब हाथी, ये तो हाथी स्नान जैसी बात हो गई। हाथी अपने स्नान के लिए प्रसिद्ध है। कैसा स्नान होता है हाथी का? स्नान तो करता है, फिर किसी तालाब में, किसी नदी में, हमारे पदयात्रा में भी हाथी कई सालों तक हमारे साथ ही, हम उसके पीछे पीछे ही चलते थे पदयात्रा में। हमारे पदयात्रा का लीडरशिप हाथी करता था, हाथी सबसे आगे, तो हमने भी देखा। तो पानी में उतरता था और खूब नहाता था, हम भी उस दृश्य देखते रहते थे। हाँ, हाथी का स्नान, अपने सूंड से कैसे फवारा, अपने खुद को ऐसे छिड़कता था अपने इधर उधर ऊपर से भी, हम लोग फोटो भी खींचते उसका। लेकिन कुछ समय के बाद जब किनारे आ जाता था सूंड से, पुनः कचरा मिट्टी फेंक देता। अभी अभी स्नान किया, किनारे आ गया, पुनः गंदा हो गया, गंदा कर दिया, खाली फुकट। अहम मन्ने अपार्थम, अहम मन्ने कुंजर शौचवत। मैं तो समझता हूं कि ये सब हाथी स्नान जैसी बात है, ये प्रायश्चित की बात जो आपने की। तो सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य राजा परीक्षित के इस कथन से प्रसन्न तो है। हाँ हाँ, कर्मणा कर्म निर्हारो न ही अत्यंतिक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तो एक कृत्य, पाप का कृत्य किया, फिर उससे मुक्त होने के लिए दूसरा कृत्य किया, प्रायश्चित का कृत्य। तो निर्हारो, कर्म निर्हारो न, तो पाप के कृत्य ने जो पाप के बीज बोए या वासना को उत्पन्न किया, उसे तो प्रायश्चित ने मुक्त नहीं किया, हटाया मिटाया, उखाड़ के उसको फेंक नहीं दिया, उस पाप की वासना को, पाप की प्रवृत्ति को। हाँ, तो ये प्रायश्चित राजा पर सुखदेव गोस्वामी स्वीकार कर रहे, हाँ ठीक है रे, वेल डन, गुड बॉय, गुड स्टूडेंट, अच्छा अच्छे हो। तो फिर अब एक दूसरे प्रकार के प्रायश्चित की वे बात कर रहे हैं, उसको वे कह रहे प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तो उन्होंने वैसे कहा है प्रायश्चित किया तो हुआ, तो व्यक्ति, पापी व्यक्ति अपने अज्ञान से तो मुक्त नहीं हुआ, अज्ञानी ही रहा, पहले भी था, प्रायश्चित तो किया, उसके उपरांत भी उसका अज्ञान तो नहीं मिटा। तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो पहला जो प्रायश्चित का प्रकार था उसको कर्मकांड कहा है, कर्मकांड। और अब जो प्रायश्चित की बात कर रहे हैं वो भी दूसरे प्रकार का कांड है, वो है ज्ञान कांड। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशेष भांड, ऐसा वैष्णवों का और उसमें भी गौड़ीय वैष्णवों का ये समझ है। ये कर्मकांड अधिकतर जो धार्मिक कृत्य जो होते रहते जो लोग थे, गर्व से कहो, क्या हम हिंदू है, गर्व से कहो तो हिंदू कैसे कर्मों में व्यस्त है, कर्मकांड में। और फिर कुछ ज्ञान कांड में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशान। तो भुक्ति की कामना कर्म कांडियों की कामना होती है, भुक्ति कामी। ज्ञान कांड वाले मुक्ति कामी, लेकिन दोनों भी कामी होते, काम से भरे होते हैं, काम कामी, तो काम से लिप्त उसको कामी कहते हैं, काम कामी। केवल विशेष भांड, केवल जहर का प्याला है। तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यसौख्याभ्याम यमेन नियमेन च। ज्ञान कांड के अंतर्गत वाले जो कुछ कृत्य है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। अच्छा है, कोई समझेगा तपसा, ये तपस्वी है तो अच्छा है, धार्मिक है, लेकिन सभी तपस्वी धार्मिक या कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते। तपस्वी तो है लेकिन भगवत भावना नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, यह भक्ति का अभाव ही है, तपस्या तो कर रहे। ऐसे कौन थे तपस्वी, हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की, ऐसी तपस्या किया वो बस उसके उस प्रभाव से देवता भी भयभीत हो चुके थे, ऐसा प्रभाव। लेकिन वो तपस्या तो भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं, मुझे अमर बनना है, मुझे अमर बना दो, फिर अमर बन जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सबको परेशान करूंगा, ईश्वरो अहम अहम भोगी अहम बलवान अहम अहम ये सब करता रहूंगा तो मुझे अमर बना दो। तो तपस्या वैसे दिव्य तपस्या होनी चाहिए, आध्यात्मिक तपस्या होनी चाहिए, यह सारे कृत्य आध्यात्मिक होने चाहिए। इसका उद्देश्य यत करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी तो कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पण, मुझे अर्पित करो, तपस्या मुझे अर्पित करो मेरे प्राप्ति के लिए। प्रातः काल में जल्दी उठो, ये तपस्या है। वर्षा हो रही तो भी कथा में जाओ, ये तपस्या है। गर्मी के दिनों में भी चूल्हे के पास बैठ के रसोई बनाओ, ये तपस्या है। लेकिन ये कार्य अगर भगवान के लिए करते हैं, भगवान को फिर रोज रसोई बना के भगवान को खिलाते हैं, तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपो दिव्यम यस्मा शुद्धे ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। वृषभ देव, भगवान वृषभ देव कहते अपने पुत्रों से, कह तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। फिर कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या। ब्रह्मा जी को भी वैसे पहला कार्य जो ब्रह्मा किए, जो सृष्टि सृष्टि के पहले ही उनको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से मैं जन्मा हूँ, और जन्म तो ले लिया लेकिन करना क्या चाहिए। नहीं, अभी इसी लंबी छोड़ी व्याख्या करते जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तो खोजने लगे, पता लगवाना चाहते थे, बड़े उत्कंठित थे, जिज्ञासु बने हुए। तब उन्होंने भ्रमण भी करने लगे, तो उन्होंने दो अक्षर सुने थे, एक था त और दूसरा था प। उन दोनों को साथ में कहे तो आ तप, तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो उन्होंने तपस्या की, दिव्य तपस्या रही, तो फिर तपस्या के अंत में भगवान आए, भगवान के साथ मुलाकात, भगवान के साथ शेक हैंड भी हुआ, और भगवान ने दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उनके हृदय प्रांगण में दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया। तो दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या। तो संसार में कौन तपस्या नहीं करता है? हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की असुविधा, शमेन दमेन त्यागेन त्यागेन त्याग, वो भी त्यागी या दानी थे। जरासन बड़ा दानी था, असुर था लेकिन दानी था, लेकिन वो कृष्ण का दान नहीं करता था, कृष्ण को नहीं देता था औरों को। तो असुर भी दानी हो सकते हैं, असुर भी तपस्वी हो सकते हैं, असुर भी पंडित हो सकते हैं। जैसे रावण बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था, तो ऐसा ऐसी दान की प्रवृत्ति या ऐसी तपस्या या ऐसा ज्ञान भी जो भगवान की सेवा में नहीं है, भगवान की भक्ति के पूरक नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति उत्तम भक्ति है, भक्ति उत्तम है, यह उत्तमा भक्ति क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म, जो कर्म कांड और ज्ञान कांड से भी परे पहुंचकर, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल फेवरेबल भी चिंतन करता ही था। मथुरा में कंस भी, लेकिन हर कोई चीज, कोई भोजन कर रहा है, भोजन में कोई पीला कोई पत्ता है तो आ उसको देखते ही उसको पीताम्बरधारी भगवान का स्मरण आता था। ए चाकू लेके आओ, शायद मेरे भोज थाली में प्रकट हो रहा है। तो स्मरण तो करता था, लेकिन जब यो मिलेगा, सामने आएगा तो मैं क्या करूंगा, मारूंगा, I'll kill him। तो ये स्मरण कोई अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। अनुकूल लेनु कृष्णानु शीलनम। तो ये जो भी है, तपसा ब्रह्मचर्य जमेन दमेन त्यागेन सत्यमेन नियमेन च क्षिपन्ति अघम महदपि। हाँ, इससे भी सुखदेव गोस्वामी, इससे भी कुछ ये भी प्रायश्चित है ज्ञान कांड के अंतर्गत, लेकिन इसकी तुलना वे कर रहे हैं दूसरे की तुलना कुंजर शौचवत के साथ हुई थी, हाथी स्नान के साथ, और इसको वे कह रहे हैं वेणुगुल्मी वानलहा, जो या पेड़ पौधे होते हैं वन में के, बांस बाम्बूज भी होते हैं, आग लग जाती है तो ये पत्ते बहुत काफी हद तक बहुत कुछ जल जाता है, राख हो जाता है। लेकिन पुनः जब वर्षा होगी तो पुनः उग आता है वो बांबू, उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, वो तो जमीन में था ही, ऊपर से तो कुछ जल गया या कुछ ट्रिमिंग हुआ, कुछ कटिंग हुआ, जैसे उद्यानों में कुछ शेप देते, आकार देते हाथी का या मोर का, या कभी काफी काटते हैं, हट छाट होती है, लेकिन नीचे से ऊ के आता ही है। या किसान तो गन्ने की खेती वाले, तो गन्ना तो काट के शुगर फैक्ट्री भेज दिया, तो उसमें पानी पिलाओ, नहर का पानी या तो पंप का पानी पहुंचा दो, तो पुनः उगाते हैं वो। जो जड़ है वो तो वही बनी थी, तो ये जो कर्मकांड या ज्ञान कांड के अंतर्गत जो प्रायश्चित है, तो इस पाप की जो जड़ है या मूल है, उसको समूल नष्ट नहीं करते। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हाँ, केवल एक उपाय है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। दूसरी पार्टी अशांत थी, सभी कामी थे, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, जो बाबाओं के पीछे जो पड़े रहते हैं, कोई बाबा कुछ चमत्कार दिखाता है तो वहां नमस्कार भी करते हैं, चमत्कार देखा तो नमस्कार, जो राख देता है, राख जीवना की राख रामगोली उनको सिद्धि कामी कहते हैं, ऐसे सिद्धि बाबा हमारे देश में होते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ मोटे 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 नाम है, 100-150 साल पहले मोटे मोटे बाबा हुए, उनके पीछे काफी लोग जो हिंदू समझते हैं, मी तुझा पाठीशिया है, मी तुझा पाठीशिया सिद्धि कामी, ये सभी कामी है, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त तो भक्ति करता है, और कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्त श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, ये देवी पुराण वही बात, कर्मकांड के अंतर्गत ये देवी पूजा, देवी देवताओं की पूजा, कई सारे यज्ञ, ये सब प्रायश्चित के अंतर्गत आ जाते हैं। शिवदम, श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है, शिवदम, और फिर क्या, तापत्रय उन्मूलनम, तापत्रय जो है, तापत्रय ताप त्रास कष्ट देने वाले तीन कारण है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इसको क्या करता है, तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलनम समूल उखाड़ के फेंक देता है श्रीमद् भागवत। इसीलिए शरणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्तो हि अभद्राणी विधुनोति सुरत्सदा, श्रीमद् भागवत ने ही कहा है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से, अन्य ग्रंथ भी है, कर्मकांड है, ये पुराण वो पुराण, ये वो बिग बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत बड़ा संग्रह ग्रंथ शास्त्र, नाना शास्त्र, लेकिन श्रीमद् भागवत के श्रवण से क्या होता है, हृदि अंतस्त ही अभद्राणी विधुनोती सुदिच्छता, ये कथा पहुंच जाती है हृदय, हृदय अंतस्थ, हृदय में हमारे चेतना में गहराई में जाकर जो भी अमंगल है, अभद्र है, या पाप की वासना है, पाप की प्रवृत्ति है, उसको ये श्रीमद् भागवत कथा, हरि बोल, श्रीमद् भागवत कथा क्या करती है, विधुनोती उसकी, उसकी सफाई करती है। चेतो दर्पण मार्जनम परिणाम, चेतो दर्पण मार्जनम, काम का जहां भी दाग है, काम की कई वासना है, कई पाप का बीज है, तो ये ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् के तथा भक्ति पूर्वक ज्ञान, वासुदेव सर्वमिति, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान, वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, इसको जो जानते हैं इसको ज्ञान कहते, ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है, और ऐसा व्यक्ति जब मेरी शरण में आता है तो फिर मैं क्या करता हूं, भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रश, और फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, मैं मुक्त करूंगा, पाप का जो फल तुमको भोगना पड़, शायद क्या निश्चित ही ध्रुवम कहा है, पढ़ सकता था, उससे भी मुक्त, और पुनः पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वासना है, विचार है, योजना है, स्ट्रैटेजी है, इससे भी मैं मुक्त करता हूं। अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि महाशशः, डरना नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये सिद्ध होता है कि सर्वोत्तम प्रायश्चित्व भी करना है तो सर्वोत्तम प्रायश्चित्व क्या है? भक्ति का कृत्य है, भक्ति करो। ये कर्मकांड नहीं, ज्ञान कांड नहीं, भक्ति का। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कर्ष्णेन निहारम इव भास्करः। तो जब फॉग, कोहरा या कोहरा कहते हैं, धुक का मराठे हैं, ठंडी के दिनों में हुआ, तो सूर्योदय जब होता है उसी के साथ भास्कर सूर्य अपने किरणों से वो जो भी फॉग कोहरा है उसको हटाता है, मिटाता है, सर्वत्र प्रकाश फैलाता है। तद्वत ये भक्ति का जो कार्य है, वासुदेव परायणः बनके अघम धुन्वन्ती कार्ष्णेन, पाप के विचारों को भी धुन्वन्ती साफ करता है। तो ये अन्य कई स्थानों पर ही भागवत का सिद्धांत पढ़ने को मिलता है, इसका उल्लेख थोड़ा कर ही चुके हैं। न तथा हि अघवान राजन पुयेत तप आदि भी यथा, अपन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ तप करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए, यमेन नियमेन त्यागेन, लेकिन हाँ इससे कुछ शुद्धि होगी, लेकिन बट न पुए तो उतना शुद्धिकरण नहीं होगा ये कर्मकांड के प्रायश्चितों से या ज्ञान कांड वाले जो प्रायश्चित है। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, जितना हम मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, एक तो कृष्णार्पित कृत्य, कृष्ण की सेवा की कृत्य हम करेंगे, या कृष्ण सेवा के कृत्य करने वाले जो पुरुष है, महाभागवत है, उनकी सेवा, उनका संग, उनकी सेवा करने से, मतलब ये भक्ति करने से, जैसे व्यक्ति शुद्ध होता है, अन्य किसी भी धार्मिक कृत्यों से वो शुद्ध नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद भागवत नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भगवान भागवत ने कहा है, सुध गोस्वामी कहे। तो नित्यम भागवत सेवन, भागवत का श्रवण हम करेंगे तो क्या होगा? तो वहां पर प्रभुपाद कहते भागवत के दो प्रकार, दो प्रकार के भागवत, एक ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत, और दूसरे व्यक्ति भागवत, स्क्रिप्चर भागवत एंड पर्सन भागवत। तो नित्यम भागवत सेवया मतलब दोनों की सेवा, भागवत की सेवा, महाभागवत श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की सेवा, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की, आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनका तिरुभाव तिथि महोत्सव भी आज है, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उस तो उनका दृष्टिकोण, उनका जो विजन रहा, उन्होंने कई सारे कार्य प्रारंभ किए, आचार्यों ने प्रारंभ किए हुए कार्य उन्हीं के जीवन में पूरे नहीं होते। आपका तो आप घर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य है अपना एक घर हो, अपना एक घर हो, एक मोटरसाइकिल हो, सब कुछ हो, ये तो थोड़ा पूरा हो जाता है, कुछ अधूरा भी रह जाता है राधा तो बिना के। लेकिन आचार्य उनके कार्य पे प्रारंभ करते हैं और फिर परंपरा में उनका कार्य आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट आचार्य, नेक्स्ट भक्तों की, वैष्णव की मंडली, फिर नेक्स्ट लगता। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के कार्य भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कई सारे प्रारंभ किए, उन्होंने परिक्रमा भी स्थापित की, उन्होंने नवदीप मंडल परिक्रमा, और इन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि भविष्य में विदेश के लोग आएंगे, जर्मनी से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, और बंगाल के या भारतीय भक्तों के साथ जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। आगे फिर भक्ति सिद्धांत भी कार्रवाई किए, फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, फिर आ गए देश विदेश के भक्त एकत्रित हुए और मायापुर में और जहाँ था सर्वत्र भारतवर्ष भर में जय सचिनंदन कहने लगे, गाने लगे। हम लोग जो आरती गाते हैं कि बजयो जय गोरा चांदे, ये भक्ति विनोद ठाकुर और सारे कई सारे सैकड़ों गीत उन्होंने लिखे, चरणागति इत्यादि इत्यादि। तो इसका गायन श्रवण कीर्तन भी उन्हीं की, उन्हीं के वाणी की सेवा है, उन्हीं की सेवा है। जो भक्ति वृक्ष है, भक्ति वृक्ष नाम हार्ट और भक्ति वृक्ष, ये सारी योजना, सारी परिकल्पना संकल्पना भक्ति विनोद ठाकुर की है, जिस पर अमल यह नागपुर में हो रहा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर की वो सेवा है। नित्यम भागवत सेवया, तो भागवत की, भागवत का श्रवण भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, भागवतों की सेवा। तो कृष्णार्पित प्राण प्राणस्तत् पुरुष निषेवया, ऐसा करने से पूरी तो शुद्धि होगी, सदृशिनो हि अयम लोके पंथः क्षेमो अकुतो भयः। सुशीलः साधवो यत्र नारायण परायणः। यही तो उन्होंने स्थापना की। भक्ति कैसी सर्वोपरि है, कर्मयोग भी कहा, ज्ञान योग भी कहा, ध्यान योग भी कहा, और फिर भगवान क्या कहे, योगी नाम सर्वेशाम मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो सभी योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है, गीता के छठवें अध्याय के अंत में भगवान कहे। अब योगा डे आ रहा है, तैयारियां चल रही है, कुछ अवेयरनेस और कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा प्रचार करो योग का प्रचार, भक्ति योग का प्रचार, या जप योग का प्रचार, जप योग या जप यज्ञ का प्रचार। तो नहीं तो फिर वही कुछ कर्मकांड ज्ञान कांड वाली बात तो कुछ हो जाती है आजकल के योग साधना में, साधना के अंतर्गत। लेकिन भक्ति योग, जप योग श्रेष्ठ योग है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे। सुशीलः, जो साधु होते हैं, सु चरित्रवान जो होते हैं, नारायण परायणः, तो वे तो किसी भक्ति के, भक्ति के पंथः, भक्ति का जो पंथ है, मराठी में खूब चलता है पंथ, हा पंथ, महानुभाव पंथ, पंथ पाथ पाथ पथ, अंग्रेजी में पैथ कहते पैथ, ये पैथ पैथ अमेरिकन पैथ कहेंगे पैथ पथ पैथ, तो हुआ ये पथ, पथ से शब्द आया, पथ पथ से पैथ हुआ। थ्री थ्री कहाँ से आ गया, त्रिन त्रिन, संस्कृत में त्रिन है, तो थ्री आ गया, लाइक दैट, कई सारे शब्द जो जननी है संस्कृत भाषा, सब भाषाओं की जननी। वाह, प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण परान्मुखम्। तो पुनः वे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, संसार में जो प्रायश्चित्त होते हैं, प्राय देखा जाता है कि वे इस प्रायश्चित्तों का अवलंबन करने वाले वे विमुख नारायण परान्मुखम्। कुछ तो नारायण परायण कहा, जो सुशील साधव नारायण परायण, लेकिन नारायण से विमुख होते हैं, सन्मुख नहीं होते, दूसरे प्रायश्चित करने वाले कर्मकांडी ज्ञानकांडी, ये नारायण परान्मुखम्, इसलिए न निपुष्णन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभम इवापगः। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, दारू की बाटलिया है, शराब की बोतल, तो जिस किसी नदी के जल से उसको स्वच्छ साफ करने का प्रयास करोगे, तो हुआ न निष्पुनंती, वो साफ नहीं होगी। वैसे ही जो चाहे प्रायश्चित करो, उससे व्यक्ति शुद्ध नहीं होने वाला है। और इसी व्याख्यान को एक सिद्धांत के रूप में अब वे कह रहे हैं, सकृन मनः कृष्ण पदारविंद यो निवेशितं तद्गुणरागियैरिह। बस कोई कृष्ण पदारविंद, कृष्ण चरणारविंद का चरण मकरंद कोई मधु है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का जो माधुर्य है, तो जिसने उस राग में प्रवेश किया है, कृष्ण का शरण में आया हुआ है, तो वह ऐसे व्यक्ति के संबंध न ते यमं पाश भ्रतश्च तद्भटान स्वप्ने विपश्यन्ति चीर्ण निष्कृतः। तो जो कृष्ण का भक्त है और जो कृष्ण रसायन का पान करता रहता है सदैव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, पादोद कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उनके चरणों का चरणामृत का पान करो तो पुनर्जन्म न विद्यते, भक्ति भी प्राप्त होगी। तो ऐसी ऐसी भक्ति करने वाले तद गुण रागी जो है, उनको स्वप्न में भी यमदूत दर्शन नहीं देंगे, दूर रहेंगे ऐसे भक्तों से जो सदैव कृष्ण गुण रागी है। नारायण परायणः है यह कीर्तनीय सदा हरि करने वाले जो है, स्वप्ने भी न पश्यन्ति पाशभृतश्च तद्भटान, तो यमदूत सदैव अपने हाथ में क्या रखते हैं, पाश रखते हैं, डोरी रखते हैं, कोई पापी तापी मिला उसका अंत आता आ रहा है, मरणासन ने पता चलता है तो मरणासन होने का पता चलता है तो रेडी रखते हैं वो अपनी अपना पाश के, और खींचने लगते हैं उसको बाहर करने लगते हैं शरीर से, तो दे आर एवर रेडी। तो हुआ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसका कोई उदाहरण भी तो है, आप कह तो रहे हो खूब कि जो कृष्ण अनुरागी है तद अनुरागी गुणरागी, उसको तो स्वप्न में भी यमदूत नहीं मिलेंगे, सामने नहीं आएंगे स्वप्न में भी, तो जागृत अवस्था का तो कहना ही क्या। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ एक प्राचीन इतिहास की बात मुझे स्मरण आ रही है, उसको मैं सुनाऊंगा। आर यू रेडी? दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तं निबोध में, और उस इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद भी तुम सुनोगे और उसे तुम समझ जाओगे। मैंने अभी अभी जो बात कही कि स्वप्न में भी न तो यम न तो यमदूत आएंगे, तो फिर कह के कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजा मिलः। एक कान्य कुब्ज की बात कह रहे हैं, जो अभी या शास्त्र में इसको कन्नौज भी कहा है, कान्य कुब्ज, और मॉडर्न कानपुर जो है, कानपुर यूपी में कानपुर, यही ये कान्य कुब्ज जहाँ रहते थे अजामिल रहते थे। कैसा अजामिल? दासीपति अजामिल। दासीपति मतलब या वेशापति अजामिल एक समय रहता था, नष्टः नाम ना, उसका नाम अजामिल था, सारा सदाचार नष्ट किसके कारण? दास्यः संसर्ग दूषितः। वो जो दासी थी, जो वेशा थी, स्वैराचारिणी, उसके संग में आ गया, उसके फंदे में फंस गया। हुआ उसकी हालत बहुत बुरी हालत हो गई। तो थोड़ा वर्णन भी, तो क्या करता था? धन जुटा लेता था। बिभ्रत कुटुंबम, अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए एन केन प्रकारेण वो धन कमाता था। बस धन कमाना है, बाय हुक और क्रुक। क्या करना है? धन कमाना, एन केन प्रकारेण। तो उसमें से कुछ प्रकार किसी को पकड़ लेता था, बांध देता था, गिरफ्तार कर देता था, और फिर उसके जेब में जेब टटोलता है, उसकी कैरी बैग खोल के देखता है, और जो जो भी उसको मिलता है उसको लूट लिया। कई तवई, फिर जुआ खेलता था और ठगाता था, बड़ा चतुर था जुआ खेलने में। ऐसे आसानी से प्लेइंग कार्ड्स वगैरह चलते थे उसके, प्लेइंग कार्ड्स, टाइम पास प्लेइंग कार्ड्स। ट्रेन में लोगों को कई सारा लोग कितना सारा समय बिताते रहते हैं, और कुछ गैम्बलिंग, गोवा बहुत बड़ा सेंटर है गैम्बलिंग का। तो आप गोवा नहीं जाना, आपको शायद, हमको पता नहीं था, हम जाते हैं महाराष्ट्र बताए इसलिए नहीं बताया। तो चोर ये, और फिर चोरी करता था, जेब काटता था, एक प्रकार से चोरी करता था। गर्हिताम वृत्तिमास्थितः, ऐसे गर्हित कार्य, और इस प्रकार सभी सभी को सताते रहता था। ऐसे ही थे वो जगाए मधाए, और आजकल आजकल भी मिलेंगे ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसा कृत्य करने वाले सर्वत्र मिलेंगे। कलीर चेला, कली के चेले। एवं निवसतस्तस्य लालयान शतसुतान। ऐसे कमाए हुए धन से अपने पुत्रों को उस दासी को का लालन पालन जब कर ही रहा था तो बहुत सारा सारे दिन सप्ताह मंथ्स एंड ईयर्स साल बीत गए। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम जयन सौ आयुर्हरति। तो सूर्य क्या करता है, हर लेता है। सूर्य उदित हुआ, सनराइज सेट हुआ, आज का पूरा दिन समय छीन लिया, सभी लोगों का समय छीन लिया। आयुर्हरति वै पुंसाम। लेकिन केवल उन लोगों की लोगों का काल या समय सूर्य नहीं छीनता जो क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाले और फिर उसी के साथ भक्ति करने वाले कालातीत हो जाते हैं, काल से परे पहुंच जाते हैं, काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो इसका तो काल बहुत सारा काल बीत गया, कितना साल तो हुआ, अठासी वर्ष का हो गया, 88 years का बूढ़ा हो गया। और बुढ़ापे में उसके 10 बच्चे भी हो गए। जब वो 88 वर्ष का था तो उसका बालक अभी अभी नया जन्मा बालक, नवजात शिशु, दैट्स नथिंग। एक अभी अभी एक विवाह हुआ, समवेयर इन द वेस्ट में कई विवाह हुआ। नो नो, ही वॉज 103 ईयर्स ओल्ड। और जिसके साथ विवाह हुआ ही वॉज 94 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो उसको व्हील चेयर में बिठा के लाए थे। तो अभी एक उनका जीवन प्रारंभ हुआ, जस्ट नाउ स्टार्टेड अफेयर हो गया। और उसमें ये भी समाचार था कि जब विवाह हुआ था तो उसके पहले 7 बच्चे थे। हमारे शिष्य जय विजय प्रभु, तो वे ब्रह्मचारी थे तो उनके पिताजी का मैरिज कार्ड आ गया। तो ने ब्रह्मचारी पुत्र को बुला रहे थे, आ जाओ मेरा विवाह होने जा रहा है, प्लीज अटेंड माई मैरिज। तो यही अजामिल परंपरा, दासी पति अजामिला। तो सबसे जो छोटा का बेटा था, भाग्य से बालो नारायणो नाम नहा, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, उसका नाम नारायण रखा। ये कुछ अज्ञात सुकृति का फल, उन्होंने अपने बच्चे का नाम टिंकू चिंकू नहीं रखा। पिंटू चलता क्या, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं उसमें, जस्ट जस्ट समथिंग समथिंग हुआ। पित्रोश्च दयितो भ्रशम, और ये के माँ बाप, ये दासी और दासी, पति अजामिल, बड़ा ही प्रेम था उस छोटा, वैसे छोटे बालक से वैसे सभी का अधिक प्रेम होता ही है या माँ बाप का होता है, तो ये भी अपवाद नहीं थे। तो नारायण से बड़ा उनका स्नेह, और प्रेम करते 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 सुखदेव गोस्वामी कहे सबद्धर दयस तस्मिन अर्भके, तो हृदय ग्रंथि बांध गया, बंधन में आया था, इतना स्नेह, स्नेह के पास, कैसे पास, कैसी डोरी, स्नेह पास करे, स्नेह पास या ग्रंथि मतलब गांठ, हृदय में गांठ बन जाती है, गांठ गठबंधन। तो वह इस बालक से प्रेम करते करते, उसका ध्यान करते करते, और कैसा बड़ा कलभाषिणी, ऐसी तोतली बोली बोलता था वो, उस तोतली बोली उस सुन के उसके लिए लाम, राम कहो बेटा राम, तो बच्चा क्या कहता है लाम, बच्चे राम नहीं कह, र नहीं कह सकते बच्चे, लाम, तो शायद ऐसा राम नहीं कहा होगा, रैम भी होता है, रैम मतलब क्या है, भेड़ी बकरा ऐसा भाई, रैम विदेश में चेन ऑफ होटल्स रैम रैम चलता है, यू नो, हमने सोचा कि वो रैम मतलब राम से कोई संबंध है, लेकिन हमें किसी ने कहना नहीं, जैसे कोई बकरा होता है, यस आई थिंक इसको, तो ऐसा कुछ कहलवाता तो पीछे कहता, उसकी तोतली बोली सुन के बड़ा खुश होता। और ये सब जब हम सुन रहे हैं, हमें याद करना होगा कि हम भी कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं है, ज़्यादा कुछ सामने मिलेगा, अजामिल का जीवन हमारे जीवन में मोर और लेस ऐसा ही जीवन। हरि हरि निरीक्षमाणस तल्लीलाम ममुदे जरठो भ्रशम, तो बच्चे की तोतली बोली को सुनता भी और फिर दर्शन करता, किसका तल्लीलाम, उस बच्चे की लीला, जो भी करता है मानो उस बच्चे की लीला है, बच्चे का कोई बच्चा खड़ा होके पेशाब भी कर रहा है उसके आगे, ये उसी बच्चे की लीला है, ऐसा समझ के बड़ा प्रसन्न होता। भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः, ते बालक का जो स्नेह है, स्नेहवश ये सब करता, स्नेह से वशीभूत होके, वश ये शब्द समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वशीभूत, वश कामवश, कामवश क्रोधवश, मतलब क्रोध हमारा चार्ज लेता है, हम हम कंट्रोल नहीं लेते वो काम का या क्रोध का, वो काम और क्रोध और लोभ हमें कंट्रोल करते हैं, काम अवश्य क्रोध अवश्य। तो वैसा कार्य करवाता है, करता ही फिर हम करते हैं। प्रकृति ही क्रियमानानी गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम्। कहता क्या है, आई एम द डूअर, मैं करता हूं, लेकिन नहीं नहीं प्रकृति ने तुमसे वो कार्य करवाया। प्रकृति कैसी है, सत्वगुण गुणमयी, गुणमयी माया, गुणमयी प्रकृति, सत्वगुण रजगुण तमगुण। तो तमगुण से ही ना, तमगुण रजगुण से उत्पन्न काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो रजगुण से उत्पन्न होते हैं काम, जो काम लस्ट ये रजगुण से उत्पन्न होती है काम और क्रोध। तो ये तीन तीन गुणों का खेल है, तीन गुण सारे संसार को नचाते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता। और फिर अलग अलग ये गुण, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ क्या सोचता, करता हम, मैं करता हूं, लेकिन भगवान नहीं नहीं तुम नहीं करते हो। गुणै कर्माणि सर्वशः, गुण करते हैं, सत्व गुण रज गुण तम गुण तुमसे कार्य करवाते हैं। तो वह जब भी भोजन के समय या कुछ पीने के समय उसको बुलाता है, यहाँ जाओ नारायण, आ जाओ खाओ, ये खाओ, क्या खाओ, मटन भाकरी खाओ, नारायण आ जाओ, या चिकन नूडल्स खाओ, नारायण आ जाओ, अंडे खाने से विटामिन्स वगैरह आजकल के शास्त्र के बताते हैं, डाइटिशियंस बताते हैं, तो अंडे पियो, फिर देखा जाएगा संडे हो या मंडे, खाते जाओ पीते जाओ अंडे, डंडे किसने देखा है, ऐसे कहते हैं, किसने देखा है नरक, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। जब ये शरीर की राख हो गई, फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ये पुनर्जन्म और फिर पाप का फल और ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज हियर, अलग से कुछ। ये हरे कृष्ण वाले कहते हैं नरक है, डरो थोड़ा, भूल जाओ, ऐसा प्रचार। दिस इज करंट टॉपिक्स। ये सब जब चल ही रहा था तो न वेद, वो नहीं समझा, आगतम अंतकम, आ गया है, कौन आ गया, अंतकम अंत करने वाला, अंत आ गया या अंत करने वाला आ चुका है, मृत्यु आ चुका है, या यमदूत कुछ दूर नहीं है। इस बात को अपनी जो लाइफ स्टाइल जो चल रही थी, उसकी लाइफ स्टाइल इतना व्यस्त था, ही वॉज एंजॉइंग, तो उसको पता भी नहीं चला। टाइम फ्लाइज, करे टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैव फन, टाइम फ्लाइज, सुख से चैन से लोग जीते हैं तो समय ऐसा ही दौड़ता है, पता भी नहीं चलता। और जब सफरिंग आ जाता है, फिर जब दुखी है तो फिर घड़ी घूम नहीं रही क्या है, वॉच स्टॉप तो नहीं हो, समय स्टैंड स्टिल, ऐसा अनुभव करते रहो. देर एंजॉइंग टाइम फ्लाइज, सफरिंग टाइम स्टैंड स्टिल. तो ही वॉज एंजॉइंग सो कॉल्ड, तथा कथित ही एंजॉयमेंट है. तो अब एंजॉयमेंट के बाद सफरिंग होता भी है, ऐसा सोचते नहीं लोग. अजय मिल भी नहीं सोच रहा था, जस्ट डू इट, क्या करो, जस्ट डू इट, सोचो बाद में सोचो. हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग, जस्ट डू इट. ये सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग भूल जाओ, नॉट हाई थिंकिंग, हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग भी नहीं, नो थिंकिंग, सिंपली लिविंग. कुछ भक्त सिंपली लिविंग, सिंपल लिविंग के बजाय सिंपली लिविंग, बस जैसे पशु पक्षी जीते रहते हैं, सिंपली लिविंग. स एवं वर्तमानो अज्ञ मृत्यु कालो उपस्थिते. तो ओ क्षण आ गया, ये अनाड़ी अज्ञ, ये भ्रमित, बिबिल्डर्ड, कामवश, क्रोधवश, सब से वशीभूत जो हुआ था, तो आ गया, वो घड़ी आ गई. ठप हो गया. तो मतिम चकार तने बाले नारायण आभये. तो उसका ध्यान जो मृत्यु काल आ गया, मृत्यु आधम का यमदूत आ रहे हैं, अनाउंस्ड, कोई घोषणा वगैरह नहीं की थी, आ ही गए. उनको नहीं कह सकते अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिया, ऐसे ही आ गए. हाँ, यमराज, यमराज स्पीकिंग. उसको लगा कोई व्यक्ति गाड़ी भी चला रहा था, वेरी फास्ट, रफ्तार के साथ, और मोबाइल पर बात भी कर रहा था, तो कोई व्यक्ति कह रहा था, आई वांट टू कम सी यू, आपसे मिलना चाहता हूँ. नहीं नहीं, आई एम वेरी बिजी, बिजी, वेरी बिजी, नो, वेरी बिजी, नो नो, कांट सी मी, मुझे नहीं मिल सकते. इतने में व्यक्ति ने कहा, यमराज स्पीकिंग. और उसी के साथ फिर उसकी गाड़ी पलटी खाई और ऑफ द क्लिफ, और फिर मिलेंगे. He was very busy, no time. भागवत कथा वगैरह देखा जाएगा. I'm very busy, I'm best. तो ये भी बेचारा व्यस्त तो था, लेकिन मृत्यु काले उपस्थिते। तो पास में ही खेल रहा था इसका पुत्र अजामिल, तो या तो यमदूत आ रहे थे उसकी ओर, तो उनको देखा। तो कैसे थे यमदूत? पाश हस्तान, उनके हाथों में क्या था? पाश, डोरी थी। पुरुषान, त्रिन पुरुषान दृष्ट्वा, तो तीन लोग थे, तीन लोगों को देखा। भ्रशदारुणान, और बड़े भयानक वो दृश्य था या उनका दर्शन था, बड़े डरावने थे। वक्रतुंडान, का मुख दांत बाहर, ऊर्ध्वम ऐसे बाल, ऐसे विदेश में जाओ तो बाल उसको पेंट भी करते हैं, फिर उसको माना मोर का पीछ होता है ना, जहाँ से इनके भी सारे ऊर्ध्व रोमना, सब टेंस इनका सारा जीवन, तो सारे इनके रोंगटे खड़े थे, रोए। और इसने देखा कि नीतुम आगतान, आत्मान, मुझे ले जाने के लिए ये लोग आए हैं। देखो देखो इनके हाथ में डोरी, देखो सीधे मेरी ओर आ रहे हैं। आई एम फिनिश्ड, अब तो मेरा अंत। दूरे क्रीडक क्रीडकम, क्रीडकासक्तम पुत्रम, तो पास में खेल रहा था उनका पुत्र, तो उसी को संबोधित करते हुए बड़े ही व्याकुल मन के स्थिति में, और असहाय असहाय असहाय, और कोई सहारा नहीं, और कोई सहारा है, हेल्पलेस। उसने नारायण ऐसा पुकारा। ये जो नारायण उच्च स्वर से उच्चारण हुआ था, तो नारायण के भक्त ऐसे वे भी तत्पर रहते, तैयार रहते, वे एवर रेडी रहते हैं। कोई कहीं पर मरणासन्न है और प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु का स्मरण कर रहा है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। ऐसी प्रार्थना करने वाले जीवन भर ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे, और अब अंत में उनके मुख से गोविंद का नाम, नारायण या गोविंद, गोपीनाथ का नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो वे प्रतीक्षा करते रहते थे, तो ना जैसे नारायण नाम का उच्चारण हुआ, तो भरतुर नाम, अरे हमारे भर्ता का नाम कोई ले रहा, ये विष्णुदूत है। तो विष्णु दूतों ने नारायण नाम का जो उच्चारण हुआ था
उसको सुना, निशम्य म्रियमाणस्य हरिकीर्तनम्। उस अजामिल ने जो हरि कीर्तन कहा या नारायण कहा, उसको नारायण के दूतों ने सुना और हुआ गया सहसा अपतन, झट से वहां आप पहुंचे, प्रकट हुए। और जब वे आए तो उन्होंने दृश्य देखा, वहां पहले ही ये तीन लोग पहुंचे थे और वे क्या कर रहे थे, विकर्षतः उसको खींच रहे थे। उन्होंने पांच फेंका भी था और उसको बांध भी दिया था, अंतर्हृदयात अंतर्हृदयात। तो उसका जो अंतकरण है, प्राण है, फिर उसकी आत्मा, और आत्मा लिप्त होती है लिंग शरीर में, लिंग शरीर कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ लिंग शरीर, उसमें आत्मा, ये सारा मिलके अंतकरण कहते हैं। तो ये सारे अंतकरण को, इसको प्राण भी कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम। तो इस अंतकरण को अंतर्हृदयात, फ्रॉम डीप विद इन हिज हार्ट, को बांधे थे और खींच रहे थे। दासीपति रजामिलम यम प्रेषान, तो यमराज ने भेजे हुए वो तीन लोग ऐसा ऐसे कार्य में व्यस्त थे, ऐसा देखा विष्णु दूतों ने देखा। और जैसे ही वे आए और ये ऐसा देखा तो खबरदार, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से चले जाओ, क्या कर रहे हो। तो ये निषेध का वचन यमदूतों ने जब सुना, के यू यम, उन्होंने आप कौन हो, यमदूत पूछ रहे हैं, हु आर यू, आप कौन हो, के यू यम, धर्मराजस्य शासनम प्रतिषेधारः, धर्मराज के शासन को रोकने वाले या निषेध करने वाले आप कौन हो, कश्य वा कुतः आयातः, आप किसके हो, कहां से आए हो, कस्मादश निषेधतः, और आप सब क्यों, यूयम किम निषेधतः, आप हमें क्यों रोक रहे हो, किम देवः, आप कोई देवता हो, उपदेवा वा, या कोई उपदेवता, देवता प्रकार, देवता और उपदेवता से प्रकार है। तो यूयम किम सिद्ध सत्तमः, तो आप कोई सिद्ध पुरुष तो नहीं हो, और मतलब आपका कोई आईडी वगैरह है, उनको रोकने वाले आप कौन हो, कौन आप। लेकिन ये सब इसीलिए भी कह रहे कि आप देवता हो, उपदेवता हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, क्योंकि उनका जो सौंदर्य है, इन विष्णु दूतों के सौंदर्य से प्रभावित हुए हैं, और एक एक सौंदर्य या अंग उसके को देख के, सर्वे पद्म पला साक्षा, आपके आपकी आंखें तो देखी, आपके पद्म लोचनी हो, आप रेशमी वस्त्र और जो पीतांबर है, पीताम्बर और रेशमी वस्त्र आप जो उसमें चमक है, जैसे बिजली चमकती है, आज चमक रही थी बिजली, ऐसे आपके वस्त्र चमक रहे हैं। किरीटिनहा आप मुकुट पहने हो, कुंडल भी पहने हो, लसत पुष्कर मालिनहा और आपके गले में कमल के पुष्पों की माला भी है, सुगंधित भी तो है माला, प्लास्टिक का नहीं है, प्लास्टिक फ्लावर्स नहीं है, तो रियल फ्लावर्स। सर्वे चनवयसः और आप जवान हो, नव युवक हो, सर्वे चारु चतुर्भुज आप सभी के सभी चतुर्भुज हो, ऐसे तो हमने पहले कभी देखा नहीं था, चतुर आचार भुजा वाले आप, और आप अपनी भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हो, धनुष भी है, तरकस भी है धनुष रखने वाला, असी तलवार भी है, गदा भी है, शंख चक्र अम्बुज कमल भी है, इससे युक्त है, सजे हुए है आपके सभी भुजाएं, और आपके यहाँ उपस्थिति से यहाँ का अंधेरा मिट गया है, प्रकाश ले आए हो। कुर्वन्तः स्वेन रुचिसः आपके स्वयं के प्रकाश से, आप कोई टॉर्च लाइट वगैरह नहीं लाए हो, आप स्वयं ही प्रकाशित हो। और इसी के साथ वैसे जो प्राकृतिक पहले की जो लाइट थी उससे भी अधिक लाइट, अधिक प्रकाश आपकी उपस्थिति से हुआ है। हाँ, आप बड़े सुंदर तो हो, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, लेकिन ऐसे सुंदर होते हुए आप किमर्थम धर्म बालस्य किंकरान नः निषेधतः। हम तो यमराज के किंकर है, हम यमदूत यम के दास है, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो, आप दिखने में तो सुंदर लगते हो, लगता है कि कोई फोटो खींचा जाए, आपका वीडियो खींचा जाए, लेकिन अच्छे सुंदर तो सर्वांग सुंदर तो हो, लेकिन आपका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, आप धर्मराज के शासन का विरोध क्यों कर रहे हो। ये जब यमदूतों की बात सुनी तो हुआ, फिर बोलने लगे, विष्णु दूत बोलने लगे, मेघ निर्हार दया गिरा, उनकी वाणी कैसी थी, बड़ी ऐसे बादल गरजते हैं, कभी आपने सुने बादल को गरज, बादलों की गरज, हाँ राज जैसे सुनी शायद मैंने पहले कभी, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हाँ ताजा अनुभव है। तो कहा है कि इन इन विष्णु दूतों की वाणी भी वैसी मेघ गंभीर या वाचा या मेघ निर्हार दया गिरा, उच्च स्वर से लाउड एंड क्लियर अब वो अपना मैसेज या अपना कथन सुनाएंगे। जिसको आप सभी सुनेंगे कल, विष्णु दूतों का प्रवचन। और ये सब जब ये संवाद हो रहा है तो श्रोता कौन है, अजामिल जो बीच में लटके हुए हैं, कमर से नीचे तो अंदर अभी अंदर है, उस लिंग शरीर का भी कमर और रूप जो है, और आधे बाहर। तो उस स्थिति में उनको संग मिला है, यमदूतों का भी, देवी यमराज के दूत है तो उनका संग भी, साधु संग ही है, उन्होंने कुछ नहीं। वैसे विष्णु दूत के पहले यमदूत, या यमदूत ही बोलेंगे, अभी भी कुछ बोले हैं यमदूत, लेकिन उनका प्रवचन अभी बाकी है, और इस अध्याय का अंत तक उनका प्रवचन चलता ही रहेगा, जिसे आप कल सुनोगे, और फिर द्वितीय अध्याय में विष्णु दूतों का भी प्रवचन सुनोगे, और फिर तृतीय अध्याय में यमराज का प्रवचन सुनने को मिलेगा आपको, प्रसन्न होंगे आप यमराज को सुनके। यमराज का जो डर बना रहता है, भयभीत रहते हैं आप, तो वो प्रवचन भी सुनो, चित्त की शुद्धि और मन की शांति प्राप्त होगी। और ये सब कहा जा रहा है, अभी क्या करना नहीं पड़ेगा, यम यातना नरक में नहीं भोगनी पड़ेगी, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो यह सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को उपाय ही सुना रहे हैं इस उपाख्यान में, तो क्या धन्यवाद। हरे कृष्णा की।